ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिववीरिञ्चिनुतम् शरण्यम् भृत्यार्तिहम् प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् परब्रह्म सद्गुरुप्रणम्य पुनिसवसन्तनमो हरिरामामुरुभवन मे यापद समान कोय अधम जीव तुम तारिया तुम ही तारे संत अब कृपामो पर करहु यो हरिदेव कहंत सद्गुरु से ती विनति पर ब्रह्म सु परणाम अनंत कोटि संत रामदास निष दिन करूं सलाम नमो राम गुरुदेव जनत्रिकाल के वंद विघ्न हरण मंगल करण रामदास
सेठ जी की कुछ बातें हैं थोड़ी और रह गई। एक बार एक व्यक्ति गीता भवन में बीमार था। सेठ जी ने उसको गंगा के किनारे ले चलने के लिए कहा। घाट पर ले आए, डॉक्टरों को बुलाया। उसी समय स्वाभाविक ही चुरू के एक डॉक्टर इंद्रजीत थे, वो आए। एक दूसरा डॉक्टर भी था। दोनों डॉक्टरों ने देखकर दवा लिख दी एवं शिव भगवान जी क्याल से कहा, ऐसी कोई बात नहीं लगती, घाट पर क्यों लाए, अभी शरीर जाने वाला नहीं है। शिव भगवान जी ने कहा तो भाई सेठ जी जाने, हम तो सेठ जी के कहने से लाए थे, वे हमें कहें कि इसे गंगा जी में फेंक दो तो हम तो इसको गंगा जी में फेंक देंगे। डॉक्टरों ने शिव भगवान जी को कहा कि जाओ आप ऋषिकेश से दवाई ले आओ। उन नौका में चढ़े और गंगा को पार करे ही नहीं कि समाचार आ गया कि उस रोगी का तो शरीर शांत हो गया। एक मदनलाल जी शाह थे, सेठ जी पर विश्वास रखते थे। उनके एक लड़का था, उनके कई लड़के थे। एक लड़के का मुंडन संस्कार सेठ जी के कहने के अनुसार शास्त्रीय विधि से कलकत्ता में ही करवाया। कुल रीति के अनुसार गांव में नहीं ले गए। थोड़े दिन बाद वो मर गया। घर में सब लोग कहने लगे, देखो हमारी कुल रीति के अनुसार मुंडन नहीं किया, सेठ जी चिल्लाते हो, ये छोरा मर गया। कुल रीति से काम करना चाहिए था। मदनलाल जी ने बात सुन ली, कुछ नहीं कहा। फिर उनके दूसरे पुत्र का नंबर आया मुंडन कराने का। फिर मदनलाल जी ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी अब क्या करूं। सेठ जी ने कहा कि मरो चाहे जियो, शास्त्रीय विधि से काम कराओ, इस बार हम जिम्मेदारी लेते हैं। मुंडन करवाया, मरा नहीं। एक शर्मा जी थे, वे गीता भवन में प्रत्येक वर्ष आते और पूछताछ कार्यालय में सेवा देते थे। जब सेठ जी का शरीर शांत हो गया, उन्होंने विचार कर लिया कि अब गीता भवन नहीं आएंगे, किसके पास आए, क्यों आए। वे अपने गांव में ही घूम रहे थे। उनको दो तीन बार आवाज आई, यहां क्यों घूमते हो, यहां घूमने से क्या होगा, जाओ गीता भवन में सेवा दे। वो घूम घाम करके अपने घर लौटे तो वहां पर गीता भवन से एक तार आया हुआ था। कि आप गीता भवन आओ। तब वे गीता भवन गए। एक दिन रात्रि में सेठ जी पूछताछ कार्यालय में आए और उनसे बोले, साक्षात दर्शन दिया है, बोले क्यों आप तो आने वाले ही नहीं थे। वो चुप हो गए। और सुनो सेठ जी की बातें। सेठ जी भागलपुर में लोकनाथ जी ढांडनिया के यहां रुका करते थे। एक बार सेठ जी ने लोकनाथ जी से कहा कि स्त्रियों के लिए सत्संग करने के लिए एक सत्संग भवन की व्यवस्था कर दे, ताकि वहां शनिवार और मंगलवार को बैठ करके सत्संग कर लिया जाए। अगली बार जब सेठ जी भागलपुर गए, तब लोकनाथ जी ने उन्हें सत्संग भवन के लिए ली गई भूमि दिखाने ले गए कि ये जमीन ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि जितने धन की व्यवस्था थी उतने से ये भूमि खरीद ली। बगल की भूमि एक व्यास जी ने ले ली। मेरे पास जब पैसे की व्यवस्था हुई तब मैंने व्यास जी से कहा, यह भूमि आप हमें सत्संग भवन बनाने दे दो, इसके बदले में हम उतनी भूमि आपको दूसरी जगह दिला देंगे। किंतु उन्होंने यह कहकर देने से मना कर दिया कि मुझे यहां रहने के लिए मकान बनवाना है। सेठ जी ने झुक करके एक कंकड़ उठाया, कंकड़ उठा के उछाला। वह कंकड़ व्यास जी की भूमि में गिरा। सेठ जी बोले, चिंता मत करो, छह महीने में व्यास जी वाली जमीन आपको मिल जाएगी। छह महीना पूरे होने में एक सप्ताह बाकी था। तब लोकनाथ जी ने अपनी बिटिया चंदाबाई से कहा, बेटा छह महीना पूरा होने को आया, भूमि तो नहीं मिली। सेठ जी की बात खाली कैसे जा सकती है, अब तो केवल एक सप्ताह ही तो रहा है। चंदाबाई ने कहा, बाबूजी क्यों चिंता करते हो, अभी तो एक सप्ताह बाकी है ना, आप खुद भी तो कहते हो। जिस दिन छह महीने पूरे हो रहे थे, प्रातः लगभग 9 बजे लोकनाथ जी ने चंदाबाई से कहा, बिटिया अब तो आज 6 महीने पूरे हो गए। उनकी बिटिया ने कहा, बाबूजी अभी कहां पूरे हुए हैं, अभी तो आज का पूरा दिन बाकी है। सेठ जी की बात में फर्क थोड़ा ही पड़ेगा। रात हो गई, 7 बज गए। लोकनाथ जी ने कहा, ले बिटिया अब तो दिन भी पूरा हो गया। तो चंदाबाई ने कहा, अभी तो 5 घंटा बाकी है। लगभग 7:30 बजे एक व्यक्ति आया और बोला कि व्यास जी को किसी ने काशी में मकान दे दिया है, वे काशीवास के लिए कल प्रातःकाल जाने वाले हैं, वे अपनी भूमि सत्संग भवन वालों को देने में बेचना चाहते हैं, किंतु संकोच बस आपसे मिल नहीं रहे हैं। लोकनाथ जी ने कहा, अरे व्यास जी मेरे मित्र हैं, मेरे से मिलने में संकोच क्यों करें, बुलाओ। 8 बजे व्यास जी आ गए, उसी समय उनका भुगतान कर दिया। ज्यादा फीस देकर के रजिस्ट्रार को बुलाकर भूमि की रजिस्ट्री करवा ली। सारा काम रात्रि 12 बजे से पहले पहले हो गया। एक बार खूब जोरदार बादल घिरे हुए थे। सेठ जी स्वर्गाश्रम के कानपुर कोठी में थे। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने पंडित हरिप्रसाद जी पारीख नापासर वालों को सेठ जी के पास भेजा कि भयंकर बादल घिरे हुए हैं, क्या करना चाहिए, सत्संग बटवृक्ष के नीचे करें या रानी कोठी में करें। सेठ जी ने कहा कि सत्संग बटवृक्ष के नीचे ही करना है, इतने बजे इतनी मोटी छींटे पड़ेंगी, फिर मौसम साफ हो जाएगा। ठीक उतने ही समय मोटी छींटे पड़ी और फिर मौसम एकदम साफ हो गया। पूर्व जन्म का प्रसंग, पिछले जन्म में हनुमान भगत जी गोविंद का सेठ जी के परम मित्र थे। वे सेठ जी से आयु में लगभग 2 वर्ष बड़े थे। सेठ जी उनको अपनी गुप्त से गुप्त बात बता देते थे, पर उन्होंने इन्हें वे सभी बातें गुह्य रखने का कड़ाई से आदेश दे रखा था। फिर भी हनुमान भगत जी ने वो गुप्त बातें किसी किसी को दया करके बताई दी। सेठ जी ने उन्हें ज्ञान की प्रथम भूमिका, द्वितीय भूमिका, तृतीय भूमिका, चतुर्थ भूमिका के विषय में बताया और बताया कि अभी मेरी स्थिति ज्ञान की चौथी भूमिका में है। भगवान के दर्शनों की भी बात बता दी, ये बताने की नहीं होती, सेठ जी ने बता दी। सेठ जी की इन बातों से हनुमान भगत जी गोविंदका के मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उनके मन में आया कि मैं संन्यास ले लूं, घर बार सब छोड़ दूं। सेठ जी की इतनी बातें हैं। इनका प्रबल आग्रह देखकर सेठ जी ने कहा 4-6 महीने यहां निरंतर भजन स्मरण करके अपनी दृढ़ स्थिति बनाओ, उसके बाद संन्यास लेने में सहायता मिलेगी। पहले तुम घर में भजन नहीं करोगे तो फिर यदि संन्यास आश्रम में चले जाओगे तो वापिस गृहस्थी में आना हो सकता है। 4 महीने पूरे होने पर फिर उन्होंने कहा कि अब मैं 4 महीना पूरा हो गया है, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूं। सेठ जी ने कहा कि देखो हनुमान, तुम्हारे भविष्य की बात की पूर्णा मेरे मन में हो रही है, तुम्हारा संन्यास निभेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा वैराग्य स्थायी नहीं है। परंतु उनका नहीं, मैं तो संन्यास लूंगा, ही आग्रह बना रहा। सेठ जी ने कहा मैं तुम्हें साथ चलने का वचन दे चुका हूं और तुम कहोगे तो मैं चलूंगा, पर अभी तुम्हें भोग भोगने अनिवार्य हैं, तुम्हें गृहस्थी में आना पड़ेगा और मैं लौटूंगा नहीं। यदि मैं सन्यासी बना तो कानों से बहरा, मुंह से गूंगा और पैरों से पंगु सन्यासी बनूंगा। मेरे मन में तुम्हारे पूर्व जन्म की बात याद आ रही है, लगभग 2000 वर्ष पहले तुम राजा थे और मैं तुम्हारा मंत्री था। उस समय भी हम दोनों ने राज्य छोड़कर संन्यास ग्रहण किया था। संन्यास लेने के बाद बहुत लोग अपने सत्संग में आया करते थे, वृक्षों के नीचे बैठकर सत्संग कराते थे। कुछ समय बाद मेरा शरीर छूट गया, तुम अकेले रह गए, लोग तुम्हारा मान सम्मान आदर करते थे। आदर तो मेरा भी होता था परंतु मैं उसे मन से स्वीकार नहीं करता था। मेरी मृत्यु के पश्चात तुमने मान सम्मान खूब आराम से स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। उस संन्यास आश्रम में तुम गद्दे लगाते, तकिया लगाते, बढ़िया खान पान भोगते, खूब माल मसाला खाने लगे, इससे तुम्हारी बड़ी हानि होगी और पतन हो गया। और समय पर तुम्हारी भी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इसके पहले तुम्हें मनुष्य जन्म नहीं मिला, तुम पशु पक्षी आदि योनियों में भटकते रहे, परंतु मैं इतने दिनों तक ऊपर लोक में रहा। जब देव योग से तुम्हें मनुष्य जन्म मिला और मेरा भी आना हुआ, यदि अब तुम हट करोगे तो वचनबद्ध होने से मैं तुम्हारे साथ संन्यास ग्रहण कर लूंगा, पर निश्चय मानो कि तुम्हें गृहस्थी में आना पड़ेगा और मैं लौटूंगा नहीं, फिर तुम्हारा और मेरा संग छूट जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है जो सोच लो। बहुत देर तक विचार किया हनुमान भगत जी ने और फिर कहा कि यदि तेरा संग छूटता है तो ऐसे संन्यास को लेने से लाभ भी क्या है। अंत में उन्होंने संन्यास लेने का विचार छोड़ दिया। कई बार सारी रात बीत जाती और इन दोनों की बातें समाप्त तो होती नहीं थी। एक दिन की बात है, सेठ जी हनुमान भगत जी का चौबारा देखने चले गए, चौबीता का निर्माण हो रहा था वो देखने चले गए। इधर ट्रस्ट की मीटिंग होनी थी, सब ट्रस्टी लोग इकट्ठे हो गए, सेठ जी को वहां समय लग गया। घनश्याम दास जी जालान को बड़ा अटपटा लगा, सेठ जी देरी से आए, सेठ जी से कहा, सेठ जी यहां तो सब ट्रस्टी बैठे बैठे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप हनुमान भगत के यहां चले गए, हम लोगों को कोई परवाह ही नहीं की, ऐसा हनुमान भगत क्या हो गया। सेठ जी ने हंसते हुए कहा, आप लोगों से मेरा मिलना हनुमान के कारण ही हुआ है, आपको इसका ऋण मानना चाहिए जिसके कारण से आपका और हमारा मिलना हुआ। ये बात अखन्नानंद जी को पता चला। अखन्नानंद जी पहले शांतनु बिहारी जी द्विवेदी के नाम से गीता प्रेस में काम करते थे। जब उन्होंने संन्यास ले लिया तो स्वामी अखन्नानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने सुना कि सेठ जी पिछले जन्म में राजा के मंत्री थे, हनुमान भगत जी राजा थे, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। ये सब फालतू की लोगों की उड़ाई हुई बात है। एक दिन उन्होंने सेठ जी से एकांत में पूछा कि सेठ जी, आपके पूर्व जन्म के संबंध में आपके नाम से कई बातें सुनी जाती हैं, क्या आपने कभी पूर्व जन्म की बातें किसी से कही हैं क्या। सेठ जी ने कहा, 20-30 वर्ष पूर्व कुछ बातें कही थी। फिर उन्होंने पूछा, आपको पूर्व जन्म का स्मरण है क्या। सेठ जी ने कहा, हाँ है। विशेष बात फिर आगे सेठ जी ने कही कि आप चाहें तो आप भी अपने पूर्व जन्म की बात जान सकते हैं। अखन्नानंद जी ने कहा कि कैसे। सेठ जी ने कहा, पातंजलि योग दर्शन में लिखा है, अपरिग्रह स्थैर्य पूर्व कथनता संबोध है। माने हमारे पास जितनी वस्तु है उसमें किसी में भी ममता मत करो, इतने में आदमी पूर्व जन्म की बात जान लेगा। आप इस सूत्र के अनुसार संयम कीजिए, वासना रहित प्रज्ञा में सत्य का आविर्भाव होता है। कभी ऐसी धारणा की थी तब मुझे पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। परंतु सेठ जी इन बातों की जानकारी को आदर नहीं देते थे कि कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। सेठ जी का एक अटपटा मंत्र प्राय लोग कहते हैं ध्यान करते हैं नाम जप करते हैं तो उस समय कई बातें याद आती हैं, क्या करना चाहिए। सेठ जी का अड़ंग बड़ंग स्वाहा, ये अड़ंग बड़ंग स्वाहा बोल दिया करो, तुमको अपने मन से कोई परेशानी नहीं होगी। जितना अड़ंग बड़ंग है वो उसमें हवन की सामग्री की तरह से समाप्त हो जाएगा। राग द्वेष काम क्रोध लोभ आदि के अवसर पर सेठ जी कहते हे नाथ, हे नाथ, ऐसे पुकार लगाओ। पुकार लगाते ही राग द्वेष वगैरह सब मिट जाएंगे। आप अपने शत्रु से भी बात करो, अर्थात आपको जो शत्रु मानता है वो आपसे बात करे, उस समय अंदर से पुकारो हे प्रभु मेरे मन में कभी शत्रुता न आ जाए, तो आपकी बात बहुत अच्छी होगी। ऐसे ही धन आ जाए, भगवान से प्रार्थना करो हे भगवान लोभ न आ जाए, हे नाथ बचा लेना, लोभ नहीं होगा। ऐसे पुकार करने से साधन बहुत तेज होता है। अब सेठ जी जो पत्र देते थे कल वो बताएंगे।